حفظ رانی صاحب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہستی ہے، تمام حمد و ستائش کے قابل ہے. اس کا نام بڑی برکت والا ہے اور اس کا نام بڑی بزرگی والا ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. دل کی گہرائی میں ایک الہ کو بسا لینا تمام عبادات کا بیج ہے. تمام عبادات اسی اس میں ذات کے تابع پنپتے ہیں، یہیں سے باراور ہوتی ہیں. اگر توحید اور الہ العالمین دل میں اتار لے آدمی محنت کے ساتھ، تو سارے عقدے خود بخود حل ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے بڑی محنت اور بڑی مشقت چاہیے. انسان اس کو اپنے دل میں نہیں اتار سکتا. کوئی بھی عالم فاضل کتنا بڑا علم رکھنے والا ہو، اس کو اتارنے کے لیے شیخ کامل کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے دور میں ڈھونڈ لیں، دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے، جس کسی کو بھی یہ سمجھ آئی ہے کہ مجھے تطہیر قلب چاہیے، کتنے زور لگائے ہیں انہوں نے، کتنے چلے کاٹے ہوں گے، لیکن آخر یہ تھا کہ کوئی کامل ہستی سے ملا جائے. اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے وہ نکلے ہیں ہزاروں ہزاروں میل، سب 500 لکو دک صحرا طے کیے ہیں، پھر بھی بمشکل کوئی ملا ہوگا. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں، ان کی عمریں بیت گئی ہیں، انہیں شیخ کامل نہ مل سکا، جس کی وجہ سے وہ تطہیر قلب کے بغیر آرزو لے کے ہی چلے گئے. ایسے وقت گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہم پر ہے اس گئی گزرے اوقات میں کہ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ مجھے فیض موسوی ملا ہے. موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں نکلے تو انہیں پیغمبری مل گئی، اور میں بیلوں کی تلاش میں نکلا تو مجھے چشمہ فیض اویسیہ کا سربراہ بنا دیا گیا، جس کی کوئی حدود نہیں ہے، پوری کائنات پہ چھا جانے والا فیض مجھے عطا فرما دیا. اور تھوڑا سا اپنی آپ بھی تیسری میں عرض کر دوں کہ ہم بھی ملک کے دفاع کے لیے گھر سے نکلے، وطن سے نکلے، اللہ ملک کے راستے کے لیے پاکستان کی فوج کی طرف سے، تو ہمیں ایک ایسے قید خانے میں حالات بدلے، وہاں حالات پلٹا کھائے، اور ہمیں ایسے ایک قید خانے میں کانٹے بھری تاروں کے سلاخوں میں ہمیں بند ہونا پڑا. ان سب کاموں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کار فرما ہے، یہ کوئی بہادری اور بزدلی کی بات نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کے دن سیدھے کرتا ہے تو اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے. جب وہاں چلے، ہم وہاں قید میں مقید ہو گئے، تو حضرت جی کو بھی کسی مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا. انہوں نے بھی اس کربناک گھاٹی کو دیکھتے ہوئے اپنا فرستادہ خلف الرشت، اپنے خاص چہیتے شاگرد ارجمند کو کیمیائے سعادت دے کر کے وہاں ہماری قید خانوں میں پہنچا دیا. حضرت شیخ المکرم اسی دن یہ سرنڈر ہو رہے تھے، اسی دوران پہنچے ہیں. بس یہ ان کے لیے ہمارے لیے ذریعہ ہی تھا اور سبب تھا حضرت کی اس معاملات کو اجاگر کرنے کا. تو ہم अंधेरी और कर्मनाक घाटियों में, गमों की अंदर परेशानियों में वहाँ थे। तो हजरत ने वहाँ पहुँच कर हमारे शेखुल मुकर्रम जो तशरीफ़ फरमा हैं, ये अपने आप नहीं पहुँचे बल्कि ये अल्लाह के तरफ से अहकामात पीछे से होते हुए ये काम होना था, ये आज जो हो रहा है। इन्होंने जाकर के हमें दिलासा दिया और गम गुसारी की और बताया कि हम लोग इसलिए नहीं आए हैं कि हम बुजदिल हैं या डरपोक हैं या हार गए हैं, बल्कि ये सबब इलाही है और हमने यहाँ अल्लाह अल्लाह करना है। और इस तरह से हमारे उस्ताद मोहतरम बकैद हयात हैं और उनका ये मिशन है जो कि मेरे पास है और मैं आपको ये बताऊंगा। बस दर्दनाक डूबते को तिनके का सहारा, हमने भी इनकी तरफ मतवज्जो किया, कैदियों ने सब ने, बड़े ऑफिसर्स भी बहुत थे और जवान दिगर सब ने इनकी सब, जब वो दो इन्होंने वो अपना फ़र्ज अदा किया और उस फ़र्ज की शनासी ने, उसकी रोशनाई ने वो काम किया कि आज आप देख रहे हैं पूरा पाकिस्तान मरकज़ के जिक्र के मरकज़ उसमें बन चुके हैं, गली कूचों में, घरों घरों में अल्लाह का जिक्र हो रहा है और पूरी दुनिया चार जाने जितने ममालिक हैं सब में ये मराकज बन चुके हैं। अभी कोई ये कहे कि मुझे शेख कामिल की ज़रूरत है कल्ब सलीम के लिए या तथहीर कल्ब के लिए, तो उसकी आरज़ू फ़ौरन पूरी हो जाती है, क्योंकि ये हज़रत का मिशन सारी दुनिया में फैल चुका है, गली कूचों तमाम ममालिक में फैल चुका है, गैर ममालिक में फैल चुका है, जो हमारी जिनकी ज़ुबान नहीं जानते, हम उनकी नहीं जानते, उनमें भी फैल चुका है। और ये बैठे हैं आपके सामने वहाँ के लोग और आ रहे हैं और आ रहे हैं और आ रहे हैं। इतना बड़ा तारीख में इतना बड़ा आपको मंजर नहीं नज़र आएगा। वली कामिल हर दौर में रहे हैं, अल्लाह वालों से कभी कोई ज़मीन खाली नहीं रही, लेकिन चश्मा फैज़ अवेसिया इस तरह से नहीं फैला गया जो जौक दर जौक पूरी दुनिया के अंदर ये इसके मराकज़ बन गए हैं। ये सिर्फ अल्लाह ताला का कर्म है, फजल है हमारे शेख पर और हमारे मौजूदा मशाइख पर कि इन्होंने अपने फ़र्ज़ को किस तरह निभाया है और कैसे कैसे मामलात में अल्लाह ताला इनसे काम ले रहा है। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। हम भी ये चाहते थे कि देखो, हम तो लड़ने के लिए आए थे, फ़ौज में भर्ती होने के लिए आए थे, काम और जिंदा या मरना या जीना, लेकिन देखो अल्लाह ताला की फजल कि उसने कैद के अंदर बंद करा के और कैसे नूर की बारिश बरसाई है और कैसे हमारे कुलूब में अपने इलाह का वो बीज बोया है और दिल से फिर वो इबादत फूटनी शुरू हुई हैं। तो मेरे दोस्तों और साथियों बुज़ुर्गों, तजर्बे की बात है कि जब तक दिल में तथहीर कलब अल्लाह का नाम रासख नहीं होगा, उस वक्त तक इबादत का नहीं पैदा हो सकती अंदर से, खाली मूली रहेंगी। इसलिए उसके लिए शेख कामिल शेख की ज़रूरत है। तो अल्लाह का शुक्र है आपको थोड़ा सा इशारे के साथ आप कामिल शेख पा सकते हैं। पाकिस्तान में हर जगह मराकज़ बताएंगे आपको कि चलो हमारे शेख के पास, चलो हमारा सालाना इज्तिमा, चलो हमारा माहाना इज्तिमा, और आपको ला करके शेख के पास बिठाएंगे। और ये शेख कामिल के बग़ैर ये तथीर कलब का होना बहुत मुश्किल है। ये तथीर कलब के अंदर मैल कहाँ से आ गया? इंसान तो फितरत इस्लामिया भी पैदा होता है, मासूमियत के अंदर पैदा होता है और घरों के अंदर आकर के फिर इसके अंदर, इसके दिल के अंदर ये मैल और ये कहाँ से आ गई, ये हशरात और ये बुराई के सांप कहाँ से उसके दिल में आ गए कि उसको गदला कर गए हैं। हमारे माहौल में जब हम पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से हम नेक सीरत पैदा होते हैं, और फिर हमारे माहौल में जब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के होते हैं, हम माहौल को देखते हैं। हमारे माहौल में झूठ, बिदत, हसद, रिया, घरों से ही हमें तबीयत ऊँची होनी शुरू हो जाती है और वो चीज़ें हम माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों को देखते देखते अपने दिल में समो लेते हैं माँ बाप खुद कहते हैं फला कोई आदमी आज बताना मैं घर में नहीं हूँ, फला ये करना ये नहीं है, खाला खाला लड़ रही हैं, बहन भाई लड़ रहे हैं, हसद बोगस की हवा चल रही है, वो हमारे गर्द दिल पे पड़ते 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 हमारे दिल मैले हो जाते हैं और झूठ हसद बोगस कीना रिया दिखलावा हुब्बे जाओ हुब्बे माल हुब्बे इकतदार हमारी दिल के जरिए बरा जमा हो जाते हैं। हत्ता कि जब हम समझदार होते हैं तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि ये क्या हो गया, सारी बुराइयाँ मेरे कलम में हैं, तो फिर उसके लिए शेख कामिल की तलाश करता है। और शेख कामिल के बगैर ये जो दिल के ये बीमारियों के नाम लिए हैं नहीं निकलेंगे। और शेख अपनी कमाल जोहर से जो खुदाबंदा ताला की अता है उसके पास, नबी वसल्लम का ख़ास उस पर फजल करम है, उसकी वजह से वो अपना अल्लाह का जिक्र कराएगा और उसके अंदर के बुराई बाहर निकलेंगी। जब बुराई बाहर निकलेंगी तो अल्लाह का नाम बीच में रासिख होगा और फिर वो जो है बीज बनेगा तमाम इबादात का, फिर अंदर से बीज उगेगा, अंदर से नमाज रोज़ा हज ज़कात अंदर से दिल से पैदा तौहीद की दायरे के गिर्द घूमती हैं सब। इसलिए इस तौहीद जो है इस्लाम का पहला रुकन है और हमने समझे पहला रुकन क्या ज़रूरत है पता ही कोई नहीं तो तौहीद क्या चीज़ है। इसलिए हम हमारे हालात वगरगू हैं, तौहीद के राशिख किए बगैर इबादत का कायम होना बड़ा मुश्किल है। तौहीद शेख कामिल की तवज्जो से उसके अहकाम से उसके अदब अकीदत अतात से ये चीज़ें कल्ब की सफाई होती है, तथीर कल्ब होगी फिर बात बनेगी। एक और बात छोटी सी बताता हूँ, ज़्यादा नहीं, मैंने वैसे बातचीत मुख्तसरी करनी है, आगे जिक्र करना है कि ये इंसानियत का एक उसूल है कि जब हम किसी अपने दुश्मन को पकड़ लेते हैं, दुश्मन हो जान का दुश्मन है, जब हमने उसे पकड़ लिया तो पकड़ते ही उसके साथ फौरी एक एक्शन करते हैं, क्या करते हैं ताकि हम उसकी वारदात से महफूज हो जाएं, हम फौरन उसके जामा तलाशी लेकर के उससे हथियार देखते हैं, उसके हथियार को छीन लेते हैं कि वो दुश्मन है हमारा हथियार लेकर आया है, हमने पकड़ लिया उसे, वो हथियार फौरन हम उससे ले लेंगे ताकि मजीद वारदात ना कर सके, बाकी कार्रवाई तो हम बाद में करेंगे उसके साथ। हथियार लेना ये पहली कार्रवाई है, फौजी को भी सिखाया जाता है, सिविल को भी सिखाया जाता है, हर अकलमंद आदमी को पता होता है कि जो डाकू चोर दुश्मन घर में आए तो फौरन कोशिश करो उसका हथियार छीना जाए, जब हम हथियार छीन लेते हैं तो वो माजूर हो जाता है। बहन ही यही मिसाल, जब शैतान किसी इंसान को देखता है कि ये इबादत में कमज़ोर हो चला है, ये ढिलम ढाला और डामाडोल सा मुसलमान है, सुस्ती काहली में लदा हुआ है, तो उसके ऊपर अपना वसवास फेंकता है और उससे वसवास फेंक करके उस पर काबू पा लेता है, दीन से बेजार करने की कोशिश करता है और वो भी समझता है ठीक है क्या ज़रूरत है, तो शैतान फौरन उससे हथियार छीनता है उस मुसलमान से। वो क्या हथियार छीनता है, फौरन उससे जिक्र लाई छीन लेता है, जिक्र की क्या ज़रूरत है, बाकी तो सब कुछ करता रहे, जिक्र की ज़रूरत नहीं है तुझे, और हो गया तो क्या हो गया, कर लेंगे कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, वो जिक्र का हथियार है बहुत बड़ा शैतान के खिलाफ, जब वो छीनता है इससे तो ये क्या होता है, उलाइक हिज़्बु शैतान, उसे अपने गुरुओं में शामिल कर लेता है, इस्तावाज़ा अलैहिम शैतान फंसम जिक्रल्ला उलाइक हिज़्बु शैतान, जिक्र इलाही उसने छीन लिया, जिक्र इलाही में सुस्त कर दिया उसे और उसे अपने गुरुओं में शामिल कर लिया। हम भी साथी गांव देहात में शहरों में कोई नहीं है, कल जिक्र कर लेंगे, खैर आज मैं नहीं आ सका जी मेरे मेहमान आए हुए थे, जिक्र कल कर लेंगे, ये छोटी छोटी कमजोरियों को वो ताड़ता रहता है कि हाँ ये शख्स आहिस्ता आहिस्ता दो चार दस दिन से कमज़ोर है, मरकज़ में नहीं जा रहा, घर में भी जिक्र नहीं कर रहा, कहीं भी नहीं कर रहा, तो फिर याद रखना इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना शैतान अलिल इंसान अदू मुबीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक ए इंसान तेरा सबसे बड़ा खुल्लम खुला दुश्मन शैतान लईन है, तूने उसको जूं दाव दिया अपना, तूने जूं थोड़ा सी कमजोरी दिखाई अपनी तो तुझ पर छा जाएगा और छाते ही तुझसे जिक्र का हथियार छीन लेगा। बाकी सारे काम करेगा, तू नमाज भी पढ़ेगा, रोजे भी रखेगा, हज भी करेगा, उम्रे भी जाएगा और लोगों को मुसलमान नजर आएगा, लेकिन जिक्र के अंदर वो तुझे छीन लेगा और उससे तुझे अपने गुरु में दाखिल कर लेगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु अलैहि हुनीब।
जिक्र का तरीका
अच्छा, अब मैं एक मुख्तसर जिक्र का तरीका बताता हूँ। जिक्र का तरीका आज तीन चार दिन से हमारे हज़रत गौहर रहमान साहब मजीदुल आली और हज़रत मोहम्मद इलियास साहब मजीदुल आली और अक्सर मेजर मोहम्मद उमर हयात साहब मदीजुल आली बयान करते रहते हैं। अब मैं कुछ शायद उन जैसा ना बता सकूँ, समझने के लिए वही काफ़ी है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको बता दिया जाए कि जिक्र का तरीका सभी जानते हैं, मगर बता देने में और तो जिक्र का तरीका आप सब जाने हुए हैं। तीसरा कलमा पढ़ने के बाद तऊज़ तस्मिया और तीन दफ़ा अल्लाह 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 कह के ज़ुबान तालु के साथ, आँखें बंद, ज़ुबान होंठ बंद, ज़ुबान तालु के साथ, तो दिल से उठाना है, सांस ऊपर खींचना है अल्लाह का नाम ध्यान के साथ, अल्लाह के साथ सांस ऊपर खींचनी है, ऊपर से फिर नीचे उठा के दिल पे मारनी है हूँ की तरफ। इस दौरानिए में बाज साथी गले से आवाज़ निकालते हैं शो करने के लिए, या उन्हें ला इल्मी की वजह से कि भाई पता नहीं ये है या सही है नहीं है, ये जो गले की आवाज़ है ये ख़तरनाक है, गले की आवाज़ कोई नहीं निकालेगा। अगर फ़र्ज़ करो उसे तरीका नहीं आ रहा तो वो खामोश बैठ जाएगा, गले की आवाज़ नहीं निकालेगा और इस तरह से वो जो मैंने बताया कि दिल से सांस उठाएगा, दिल सांस के अंदर अल्लाह का नाम पिरोएगा और ऊपर से हू की ज़रब दिल पे पड़ेगी। और ये पांच रूह के आज़ाए रईसा हैं सीने में और दो ऊपर हैं, सात आज़ाए रईसा हैं, ये सीने की दौलत है। और ये दौलत यहीं के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाह रहीम, अफला या आलमो इज़ाबो से रमा फिल कबूर बहुत से रमा फिल सदूर, क्या तुम नहीं जानते कब्रों में ज़िंदा हो गए, उस वक्त पता चल जाएगा कि सीने में क्या कमा के लाया हूँ। ये जो जिक्र लाई कि जो सीने के लताइफ़ हैं, ये हुस्से रमा फिल सदूर, सीने की कमाई देखी जाएगी, फरिश्ते देखेंगे, तू भी देखेगा कि हाँ कमा के क्या लाया हूँ। तो इसलिए ये बहुत बड़ी दौलत है, ये जो सीने के लताइफ़ हैं ये कमा के आगे की ज़िंदगी के लिए बनाए जा रहे हैं, बहुत तादेर अब्दुल आबाद तक का ये सौदा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कैसे आंखें बंद और दिल से अल्लाह का नाम ऐसे उठाना है। ये लताइफ़ इस तरह से तब्दील करने हैं, गले की आवाज़ नहीं निकालनी है और बीच में से उलट पुलट नहीं होना है, अदब तरीके से जिस तरह पहले आसानी से बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाएं, और ये अल्लाह का ज़िक्र इस तरह करने से ये तमाम कमालात तेरे सीने में वारिद होंगे। और शेख की मौजूदगी में तो कमाल ही का है कि हमारे चंद दिन हैं, हम इनकी सोबत से जो यहाँ फैज़ इनके सोबत से मिलेगा, जो नूर कहीं उससे बहुत हल्का है, उससे और हल्का है, तो इसलिए ये कमाई बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला हमें इसमें पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।